बादशाह ने उनको कहा कि आप मेरे पास मकीन और अमीन है, कुछ भी मांग सकते थे उदा, लेकिन देखिए यूसुफ क्या मांग रहे हैं। काला जअलनी अला खजाइन अर्दी, कहने लगे मुझे जमीन के खजानों का मालिक कर दे, क्योंकि इन्नी हफीज व नलीम, बेशक मैं हिफाजत करने वाला भी हूं और इल्म भी रखता हूं। अब आप कहेंगे देखा, जाते ही कह दिया मुझे खजाने दे दो, वजीर खजाना बना दो। हालांकि यहां खजाइनिल अर्द से मुराद वजीर ज़रात। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो ओहदा मांगा वो ज़रात से मुतल्लिक मांगा, एग्रीगेशन से मुतल्लिक। क्यों मांगा? क्योंकि यूसुफ को पता था उस ख्वाब की रोशनी में कि इस मुल्क पर एक बड़ा सख्त वक्त आने वाला है, और इस मुल्क में ऐसी कहर चाली पड़ेगी कि जब तक कोई समझदार वजीर, सिंसियर और अकलमंद, हफीज भी हो, हिफाजत करने वाला भी हो, यानी उसकी नीयत अच्छी हो, यह नहीं कि खुद अपने लिए जमा करता जाए कि अच्छा जब कहत आएगा तो मेरे खानदान के पास तो करोड़ों में दूसरे मुल्कों में स्मगल कर दूं आज ही ताकि कल फायदा हो जाए, ये नहीं। हफीज यानी मुल्क का भी सिंसियर हो, अवाम का भी सिंसियर हो, और दूसरी बात है अलीम, नॉलेजेबल हो, उसको पता हो कि ये अनाज जो सेव करना है ये कैसे करना है, इसका इल्म यानी दुनिया का भी इल्म हो और आखरत का खौफ भी हो, तो वो ये काम कर सकता है। आप बताएं कि डूबती कश्ती का कौन मल्लाह बनेगा? कोई लालची? नहीं, जिसके दिल में दर्द होगा कि इस डूबती नाव को मैंने इसको किनारे पर लेके आना है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने चूंकि तावील अहादीस दी थी, मामला फहमी थी, अल्लाह का खौफ था, एक नेक बाप की औलाद थे, उसकी तरबियत का असर था, तो हजरत यूसुफ को समझ आ गया कि इन हालात में मुल्क का कंट्रोल अगर किसी अनसिंसियर बंदे के हाथ में चला गया, किसी ऐसे बंदे के सामने के जो नफ्स का गुलाम है या जिसको काम करना ही नहीं आता, तो ये मुल्क डूब जाएगा। दुआ कीजिए कि आज के दौर में हमें ऐसे यूसुफ मिल जाए जिनको इस बात का यकीन आ जाए कि आज उम्मते मुस्लिमा के पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन हफीजुन अलीम, ये दो खूबियों वाले लीडर्स चाहिए। ये दो खूबियों वाले इंसान अगर आज आ जाएं तो आप देखिएगा कि अगले 2-4 साल में पूरी दुनिया में मुसलमानों की हुकूमत हो सकती है, जो पूरी दुनिया में बगैर किसी जंग के, बगैर किसी तीर तलवार के चलाए अपनी खूबसूरत पॉलिसीज़ की वजह से अमन और चैन पैदा कर देंगे। फिर यहाँ से एक और चीज़ भी समझ आती है, और वो क्या है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ओहदा खुद नहीं मांगा। बस लोग इस जुमले पे आके तफसीरों में इतराज़ करते हैं कि देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा कि जो तुमसे ओहदा मांगे उसको ना दो, यह हदीस है लिख लीजिए, आपने फरमाया जो तुमसे बड़ाई मांगे उसको बिल्कुल ना दो। ये जो हमारे यहाँ वोटिंग और कन्विंस करना और कहना वोट दो मुझे, ये शर्म जायज़ नहीं है। इस्लाम तो इंसान को जिम्मेदार इंसान बनाता है, कहाँ ऐसी बातें करके जिसमें बाद में इंसान को अपने आप को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में डालना पड़े, तो मना करता है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यहाँ ये नहीं मांगा, बल्कि आप देखिए कि बादशाह उनको देना चाह रहा था कुछ, तो यूसुफ ने अपनी खूबियाँ बताई। यहाँ से एक बात समझ आती है कि जब कोई मिसाल है किसी जगह जॉब का लेटर आता है, अपनी सीवी देनी पड़ती है, तो फिर उस वक्त नहीं शर्माना चाहिए कि नहीं, ये तो रियाकारी हो जाएगी, मैंने मास्टर किया है, फिर तो मैं बड़ा बन जाऊंगा इसमें, मैंने इतने साल पढ़ाया है, मैंने इतने साल ये काम किया, नहीं, फिर दीजिए। यहाँ से मुफस्सरीन कह रहे हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी उन खूबियों का तذکرہ किया जिसका अभी बादशाह को भी नहीं पता, हफीज भी हो और अलीम भी हो। तो ऐसे वक्त में जब ज़रूरत पड़े तो फिर इंसान अपनी खूबी का इजहार कर सकता है, बजाय इसके कि पीछे हटे। ये भी एक बहुत बुरी बात होती है, अंडर कॉन्फिडेंट होने की बात है कि इंसान को कोई जिम्मेदारी मिले तो कहना नहीं 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 मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर सकती, ना 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 मुझे मुश्किल है। बस दफ़ा लोग सोचते हैं ये आजजी के लिए हम कर रहे हैं, आजजी कोई नहीं होती, सुस्ती होती है, ऐसी जिम्मेदारी पड़ जाएगी तो मुश्किल में पड़ेंगे। तो इसमें एक बड़ा खूबसूरत असूल है, मैंने एक दफ़ा सिर्फ इन एक ये चार आयतें जो आज की एंड तक सबक किए, इसके ऊपर एक पूरा मैनेजमेंट के ऊपर सेशन दिया था कि क्या तरीक़ाकार है, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, किन को दो किन को ना दो, क्या तरीका हो, क्या खूबियाँ हो, बहुत बड़े बड़े इशारे हैं इसके अंदर। लेकिन इस वक्त हम इस पर ज़्यादा बात कर नहीं पाएंगे और ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए कि अभी हम सिर्फ हज़रत यूसुफ के नाते से देख रहे हैं। लेकिन यहाँ कम अज़ कम ये याद रखिए कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को 7 साल जेल में रखने के बाद अल्लाह ताला इस ऑनर के साथ मिस्र के तख्त पे बिठा रहे हैं। पीछे आपने सुना कि यूसुफ ने जिक्र तो किया था कि जरा बादशाह से मेरा जिक्र करना, लेकिन वो शख्स भूल गया। क्यों भूला? आपके दिल में एक सवाल आना चाहिए, क्योंकि शैतान भुला देता है नेकी की बातें। और दूसरी बात यह है, हर चीज का एक वक्त होता है। जितना मर्जी शोर मचा ले, कुछ काम अपने वक्त पे ही होंगे। चीखें, चिल्लाएं, तड़पें, घबराएं, परेशान हो, क्या बस सिर्फ आपकी जिंदगी में ऐसा नहीं होता? कोई एक मामला लटक जाता है, कोई एक लटका हुआ, बाकी सब काम चल रहे हैं। मिसाल एक बच्चा है, उसका रिश्ता ही नहीं हो रहा, हो ही नहीं रहा, जिधर होता है टूट जाता है, जिधर होता है बात ही नहीं बनती, बाकी सब आपके मामले खुशबाश है। सब्र कीजिए, जल्दी ना मचाए। बाज दफा आप देखिए घर नहीं मिलता, बाज दफा आप सोच रहे होते हैं कुछ जॉब मिले नहीं मिलती। अल्लाह क्या चाहता है कि जल्दी मचाने के बजाय इंतजार करें। हर पत्ता अपने वक्त पे ही लगेगा। आप देखिए गर्मी आई है ना, अपने वक्त पे ही जाएगी। आप शोर मचाएं, कॉलम लिखें, अखबारों में इश्तेहार दें, कुछ करें, गर्मी 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 वक्त पे जाएगी। बर्फ आ गई है अगर नॉर्वे में, तो अपने वक्त पे ही जाएगी। अल्लाह हमें सिखाता है कि वक्त का इंतजार करो। बस दफा कुछ चीजें तैयार हो रही होती हैं हमारे लिए, चूंकि हमने बहुत अच्छी चीज मांगी होती है। अभी जो चीजें हमारे इर्द गिर्द है वो ज्यादा अच्छी नहीं है। जैसे आपने कभी कोई चीज़ बनवाई हो तो वर्कर्स क्या कहते हैं कि फौरी चाहिए तो जैसी तैसी ये ले लें, और अच्छी चाहिए तो ऑर्डर दे दें, एक हफ्ता महीना इंतज़ार कर लें फिर देंगे। तो बाज़ लोगों को अल्लाह ने बेस्ट थिंग्स देनी होती हैं। यूसुफ का किरदार बिल्कुल इधर है। सिद्दीक, सच्चा, खरा, दिल का सच्चा, जुबान का सच्चा, मैन ऑफ ट्रस्ट है। अल्लाह ने जेल की तन्हाइयों में उनकी ऐसी खूबसूरत तरबियत करवा दी कि लोगों को यकीन हो गया कि यूसुफ इस मुल्क के मामले में बहुत ज्यादा मुखलिस होंगे। इनके डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है, इनमें बहुत सारी खूबियां हैं, और ऐसी चीज़ों से ही लोग जीते हैं। यहाँ एक छोटी सी बात नोट कीजिए, इसी मामले में कि बादशाह उनको एक जॉब ऑफर कर रहा है और यूसुफ को मिल रही है। अगर यूसुफ सिद्दीक ना होते और हफीज और अलीम ना होते, तो याद रखिए कि वक्ती तौर पर बादशाह पर यूसुफ का इंप्रेशन पड़ जाता, लेकिन थोड़े दिन में टूट जाता। बहुत आसान होता है किसी को बातें करके इम्प्रेस कर लेना, लेकिन आप अपने दिल को पूछ लें, किसी से कुछ ना पूछें। माशाल्लाह आप सब दुनिया में चलते फिरते, घर बार, कई लोगों ने जॉब्स भी की होंगी, अपने दिल से पूछिए। इस वक्त कुछ लोग अगर आपके दिल की दुनिया में बैठे हुए हैं, आपके दिल पे कुछ लोगों की हुकूमत है, उसकी वजह क्या है? कौन है वो लोग? बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, कुलीग्स हैं, साथी हैं। वो लोग हैं जो अपने अमल से साबित करते हैं कि वी डिजर्व इट। माँ प्यार तो सारे बच्चों से करती होगी, आपको पता होगा, लेकिन जो बच्चा सिद्दीक है, जो ट्रस्टवर्दी है, जो खरा है, जो दोगला नहीं है, जिसके अंदर अपनी बात करके उसके ऊपर जम जाना है, आपको उससे ज्यादा मोहब्बत होगी। ये है वो खूबी, जो दिल में आ जाए तो कोई आपको नुकसान दे ही नहीं सकता। इसके अंदर जरूरत है। अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जरिए हम सबको बता दिया कि तुम सिद्दीक बन जाओ, दुनिया के अंदर तुम देखोगे बेताज बादशाह हो। और इस्लाम का यही मिजाज है। ये जो रिटायरमेंट का तसव्वुर है ना, हमारे यहाँ 60s में गालिबन होती है, हर मुल्क का फर्क है ना, इधर कितनी है, 65 में रिटायरमेंट है ना, इस्लाम इसको नहीं मानता। इस्लाम का मिजाज देखिए, हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, इन चार को तो आप सब अच्छी तरह जानते हैं। ये अपने डेथ बेड तक मुस्लिम लीडर थे। इस्लाम में नो रिटायरमेंट, नो वोटिंग आफ्टर 5 ईयर और 7 ईयर, और अब आप दोबारा नहीं आ सकते। जैसे ऐसे ही मुझे एक बात हो रही थी तो सदर ओबामा के बारे में, तो मुझे किसी ने कहा कि उनका ये आखिरी साल है ना, 7 ईयर्स होते हैं, तो यार, तो मैंने ऐसे पलकें झपकी, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब वो सदर बने थे और हम अमेरिका में थे, उसके बाद से ही समझें कि ये यूरोप का सिलसिला थोड़ा थोड़ा इधर उधर शुरू हुआ। तो मैंने कहा 7 साल गुजर गए, मुझे तो वो सारा वक्त याद है जब ये बने, तो मुस्लिम्स ने क्या सोचा, इनके नाम पे कितनी बातें हुई, इनके पीछे कितनी बातें, तो 7 साल गुजर गए। कहा गुजर गए, और अब ये कभी दोबारा नहीं आ सकते। ये अमेरिका का रूल है, वन टाइम ओनली लीडर है। अब आप सोचिए कि उन्होंने जितना मर्जी मुल्क को फायदा दिया हो, जितनी मर्जी हफीज अलीम और अपने मुल्क के लिए फायदे दिए हो, लेकिन अब उनकी खूबियां खत्म। इस्लाम में ऐसा नहीं है। यही बात यहाँ समझने की है कि जब इस्लाम किसी को एक चीज के ऊपर तैयार करता है ना, तो फिर उससे मरते दम तक फायदा लेता है। वरना पता क्या होता है, 65 में आप उसको नहीं रिटायर करते, साथ उसके अंदर का वो सारा जो एक एक्सपीरियंस, बिल्कुल उसका एक्सपीरियंस खत्म, और क्या उसका मोरल खत्म करते हैं। जैसे एक सिस्टर है, तो उनके हस्बैंड को कुछ जिस तकलीफ हुई, तो डॉक्टर्स ने उनको ऑफर दी कि अगर आप चाहें तो हम इनके अर्ली रिटायरमेंट लगा के इनको फारिग करते हैं। तो उसने हाथ वो जोड़े, कहती मैं डॉक्टर का क्या कह रही हूँ कि अगर इनकी रिटायरमेंट लिखनी है ना, तो मेरे लिए भी कुछ लिख दो, कि मैं तो खौफ कर रही हूँ कि ये मर्द घर में सारा दिन रहेगा तो ये खुद कितने कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे और ये मेरे ऊपर फिर कितनी रोक टोक करेंगे, तो इनको जाने दो, कम पैसे दो, कम वक्त लगाओ, लेकिन ये जाएं, क्योंकि इनको रिटायर करके घर में ना बिठाओ। तो आप देख सकते हैं ये सारी बातों में कि इस्लाम का स्टाइल ऑफ वर्किंग और मेथडोलॉजीज आज के दौर से कितनी कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। ये है वो सारी चीज़ें जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हम सबको सबक सिखाए। और आप देखिए कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जितनी आजमाइशें थी ना, ये छुपी भी नहीं थी। ये भी एक नुक्ता नोट कीजिए, आम लोगों में आजमाइशें आती हैं, हिडन होती हैं, पता ही नहीं चलता किसी को घर में क्या हुआ, अंदर क्या हुआ, खानदान में क्या। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जितनी आजमाइशें आई, ये लोगों के अंदर आई पब्लिकली। आज के दौर में मेरा ख्याल है ये सबसे ज्यादा बिटर एक्सपीरियंस होगा कि किसी को दूसरों के बीच में ऐसे मुश्किलें आए। अक्सर लोगों की आपने बात सुनी हुई है, बाज मर्द हैं वो बदतमीजी करते हैं, गलत बात करते हैं, हाथ उठता है तो बीवियां क्या कहती हैं, देखो किसी के सामने मेरे सामने ऐसे नहीं बोलना, घर में अंदर बैठ के जो मर्जी कह लो, कहते हैं ना। बच्चे भी यही कहते हैं, मेरे दोस्तों के सामने मुझे कुछ ना कहना। हम दूसरों के अंदर बड़ा बनना चाहते हैं, घर के अंदर हमारी जो भी कैफियत हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम का इम्तिहान देखिए, एक स्कैंडल, एक मुश्किल, दूसरी, हर वक्त मुझे तो ऐसे तस्वीर में आ रहा है कि अगर आज के दौर पे ले तो यूसुफ के नाम का एक अखबार छप चुका होता, जिसमें इनकी बातें, उनकी बातें, अंदर बाहर दिस एंड दैट, इतने ज्यादा बैड क्रेडिट होने, आज की जुबान में कहूंगी, नबी तो कभी बैड क्रेडिट नहीं होते, जिस शख्स पे इतने इल्जाम हो, इतनी बातें हो, उसको एक बादशाह खुद नौकरी ऑफर कर रहा है। ये है खूबसूरत नुकता। तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें कि कोई आपके खिलाफ किसी को कर दे और आपसे कोई नेमत चली जाए, ये कभी नहीं होगा। अगर आम हालात होते, यूसुफ अलैहिस्सलाम कनान में रहते, यही 20 25 30 साल वहां बड़े सुकून से गुजारते, फिर अपनी सीवी लेते और जाते बादशाह के पास कि मुझे जॉब चाहिए प्लीज ले लें, तो कभी भी बादशाह दरवाजा भी ना खोलता। हालांकि यूसुफ के जरिए अगर आप देखेंगे तो ये इनकलाब का एक दरवाजा खुल रहा था मिस्र के लिए, उनकी पूरी लाइफ चेंज हो रही है। अल्लाह ताला ने इस तरह से तैयार किया कि यूसुफ तवील आजमाइशों से गुजरे, बादशाह से लेके आम शहरियों तक मिस्र का बच्चा बच्चा यूसुफ से वाकिफ था। यूसुफ जरबुल मिसल बन चुके थे, उनकी कहानियां आम थी, और लोग ये बात कहने पे मजबूर हो गए कि यूसुफ इन तमाम बुरे हालात में, हमारा मिजाज कितना बिगड़ जाता है आजमाइशों पे, कहते बात ना करो मुझसे, मेरा मूड अच्छा नहीं, मैं हाइपर हूं, मैं गुस्से में, आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम टेंस्ड, कहते हैं ना, अपने सारे नेगेटिव वर्ड्स लिखिए जो घर में इर्द गिर्द हम अक्सर बोलते रहते हैं जब हमारा मूड खराब होता है। इतनी आजमाइशों के बावजूद यूसुफ अमानतदार, रासबाज, हिल्म, जब्त नफ्स, आली जर्फ, जहानत, फरासत, मामला फहमी, कोई इनका मुकाबिल ही नहीं था। हमारे अंदर कोई थोड़ी सी खूबी होती है ना, वो भी जाया होती है, हम कहते हैं क्या करूं, मेरा तो दिमाग ही नहीं चलता, इतने गम, इतने सदमे पड़े, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया, मेरे तो सर में दर्द शुरू हो जाती है अगर मैं किताबें खोलती हूँ। ये हमारा अपना अंडर एस्टिमेट होना है। कभी भी बुरे हालात का शिकवा कर कर आप अपनी शख्सियत की खूबियों को जाया ना करें। जो है वो आपके बाहर है, गुलाब का फूल देख लीजिए, कमल का फूल देख लीजिए, कीचड़ में खिलता है। आप कैसे कह सकते हैं कि माहौल इतना बुरा मिला, मुझे इतना इन्होंने दबाया, इतना दबाया कि अब तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया। नहीं, आप स्ट्रांग रहें, आपके अंदर बातें होंगी तो इंशाल्लाह ताला आपको फायदा होगा। और आप देखेंगे कि वक्त का बादशाह यूसुफ के आगे हथियार डालता हुआ दिखता है, उसको समझ आ चुकी है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अब मेरी जरूरत बन गया है। ये वो वक्त होता है कि जब लोग इस्तीफे देने लगते हैं कि अब तो मुल्क का खजाना लुट चुका है और अब तो कुछ रहना ही नहीं, चलो हम पकड़ लेते हैं और जान छोड़ते हैं और हमारा तो फ्यूचर सिक्योर है। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये बात कही, बादशाह ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, कोई तो है जो इस गिरती कश्ती को संभालने वाला आ गया। तो अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की इस बात के जरिए हम सबको सिखा दिया कि मुखलिस बन जाओ। अगर आप किसी भी चीज़ को उसके हक के साथ करते हैं तो आप देखेंगे कि आप उस चीज़ को मतलब अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी एक नागुजीर चीज़ बना लेते हैं। अब क्या हुआ, आपको बीच में तफसीलें नहीं मिलेंगी, ख़त्म। बस ये कह दिया आयत 56 में, वकज़ालिका मक्कन्ना ली यूसुफ फिल अर्द, और इसी तरह हमने यूसुफ को जमीन में जगह दे दी। अर्द से क्या मुराद है इधर, मिस्र। हमने यूसुफ को इसी तरह मिस्र की जमीन पर जमा दिया, उनके कदम जमा दिए। ये तो बब मिनहा हैसु यशा, कि वो इसमें जहां चाहे अपना ठिकाना बना ले। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र में कदम जमाने का ये दूसरा मौका मिला। इससे मिलते जुलते लफ्ज पीछे पड़े थे, कुएं में से निकालते हुए क्या अल्लाह ने कहा, कज़ालिका मक्कन्ना ली यूसुफ, हमने यूसुफ को कुएं से निकाल कर अजीज मिस्र की शफकत में दे दिया। फिर वहां से निकले तो जेल, और उस जेल की कुएं में तो हो सकता है वो ज्यादा से ज्यादा 7 दिन रहे होंगे, 3 दिन रहे होंगे। तो वहां से निकले तो एक बस वजीर का घर था, लेकिन 7 साल की जेल के बाद यूसुफ को कहाँ किया, वजीरे खजाना बना दिया, वजीरे जरात बना दिया। एक सहराई बच्चा, एक बद्दू माहौल में पढ़ने वाला बच्चा उस वक्त की सुपर पावर का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, ये है अल्लाह की शान। नसीबु बिरहमतिना मन नशाओ, हम जिसको चाहते हैं अपनी रहमत से नवाजते हैं। वला नदी अजरल मुहसिनीन, और हम नेकों का अजर जाया नहीं करते, बल्कि अगली आयत पर बात पूरी होती है, वला अजरुल आखिरति खैरुल लिल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तकून, और आखिरत का अजर तो बहुत ही बेहतर है इनके लिए जो ईमान लाए और तकवा की रविश इख्तियार करें। अगर इस मसले को समझ गए ना, तो हमने हकीकत में यूसुफ की कहानी में से अपने लिए बेहतरीन मॉरल ले लिया। इतने हालात के थपेड़े इस फतह के लिए थे। वो एक शेर है, एक हमारे अंकल थे तो वो एक शेर बड़ा अच्छा पढ़ते थे, मुझे आता नहीं लेकिन मफहूम उसका पता है। कहते थे कि हादसा जो होता है ना, हम कहते हैं ना हादसा हो गया, अचानक हो गया, कहते हैं हादसा अचानक नहीं होता, वक्त इंतजार करता है बरसों। कोई भी हादसा अचानक नहीं होता। ये आप कह रहे हैं ना कि बस उल्टी तो हादसा हो गया, ये आप कहते हैं बच्ची को डाइवोर्स हो गई, ये आप कहते हैं कि बच्चे का घर छूट गया, आप कहते हैं चोट लग गई, ये हो गई, ये आपको नहीं दिख रहा था। वक्त ने, जमीन और आसमान ने कब से इसका इंतजार शुरू किया हुआ था कि ये बच्चा बच्ची इन सारे हालात से गुजरे, इसके ऊपर इतने इल्जाम लगें, इसको इतने लोग ठुकराएं, इसकी कदर ना करें, फिर अल्लाह इसको वो इज्जत दे। अब देखिए, गिरे पड़े बच्चे हों या वो बच्चियां या बच्चे जिनके घर शुरू में टूट जाते हैं, तलाक हो जाती है एक बच्ची को, क्या होता है, सारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। मैं ऐसी सिस्टर हैं उनकी अक्सर मिसाल देती हूँ नायतों पे आके, कि शादी हुई, अच्छी थी वो, बहुत अच्छी थी, दीनदार थी, लेकिन जहाँ हुई वो ज़्यादा दीनदार नहीं थे। 2-4 साल शायद जब कितना गुजरा, बच्ची घर आ गई, ना उस लड़के को उसकी शक्ल पसंद थी, ना उसको उसका हिफ्स पसंद था, ना उसका लाइफ स्टाइल पसंद था, और सोन था अपनी बिरादरी का, और वो कौम ने जो अपनी बिरादरी को बहुत अहमियत देती है। वो बच्ची इतनी ज्यादा, जिसको आप कहना चाहिए कि क्रश हुई, बच्ची नहीं, ज़रा लड़की बन गई थी, 25-30 साल की तो होगी, कि वो कहीं नहीं जाती थी, कहीं नहीं आती थी, मस्जिद में जाना उसने छोड़ दिया, नमाजों में नहीं, दरसों में नहीं, क्योंकि लोगों की नजरें नहीं बर्दाश्त कर सकती। और हमारे ऐसे ही होता है कि लड़के का तो शायद कम ही बिगड़े, लड़की की वैल्यू कम हो जाती है, कि कोई तो गड़बड़ थी जो इसको रिजेक्ट किया। अल्लाह ने ऐसे हालात उसके बनाए, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ, इसलिए मुझे ये बातें नहीं भूलती, कि अल्लाह ने उसको इतना दीनदार, खूबसूरत, उम्र में भी उससे छोटा, और दीन में एक बहुत बड़ा आलिम है इस वक्त भी जहाँ की मैं बात कर रही हूँ, उसकी बीवी बना दिया। तो वो जब शादी हुई तो वो मेरी उससे दोस्ती थी, तो वो जो बातें अपनी बताती थी ना, तो मुझे ये आयतें याद आ जाती हैं, कज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ, कहती थी मुझे यकीन नहीं आता मैं वही हूं। पहला शौहर कहता था तुम्हारी शक्ल मुझे अच्छी नहीं लगती, और दूसरा कहता तुमसे प्यारी कोई है ही नहीं दुनिया में। यकीन कीजिए, अल्लाह सब्र वालों के अजर जाया नहीं करता, कभी जाया नहीं करता। असल बात है कि हम खड़े हों, और ये सब कब मिलता है, जब मुश्किल हालात में अल्लाह से खुश रहे। मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा ये सब कैसे मिला, तो उन्होंने कहा कि हर वो फैसला जो मुझे अपने ऊपर बड़ा बुरा भी लगा, मैंने उसको खुशी से माना। इसी तरह किसी से बात हो रही थी तो वो भी बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे आज तक जिंदगी में कोई गम नहीं मिला, गम महसूस नहीं हुआ, फिर कहते मिला ही कोई नहीं। फिर बातें हो रही थी तो कहा कि मैं कहीं डॉक्टर पे गया तो वहां खड़े खड़े डॉक्टर ने कहा कि आपके तो दिल के 3 वाल्व बंद है, तो कहते मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। यदि उन्होंने ऐसी खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह की कि मैं दोबारा कॉन्शियस होकर उनकी बात सुनने लग गई कि डॉक्टर ने इनको वॉल्स बंद होने की बात की है ना, कहते मैंने उसको बिल्कुल नहीं नोट किया, इट्स ओके ये बताओ आगे क्या करना है। तो उन्होंने कहा इसका इलाज है मुमकिन, लेकिन 6 महीने की डेट है, लाइन पे लग जाओ। उसने कहा 6 माह तो नहीं, क्या प्राइवेट करा लो। पता नहीं कितने हजार पाउंड का उसने खर्चा बताया। कहते भाई बैठे बैठे घर फोन करके चेकबुक मंगाई और मैंने कहा मेरा करो ऑपरेशन। कहते हैं 16वें दिन मैं भागता दौड़ता अपने घर में आके फिर, और आज तक माशाल्लाह अल्लाह उनको जिंदगी दे, सेहत है अभी भी हयात है और बड़ी अच्छी सेहत में। कहते मैंने नहीं बुरा माना कि मैं दिल में दर्द है, कहते उस वक्त क्या कहा, अल्लाह का फैसला, ओ मुझे अल्लाह ने हार्ट अटैक करवाना है, अल्लाह ने मेरे दिल के वॉल बंद कर दिए। ये करके देखिए ये मार्फत का बड़ा आला दर्जा है। हम जिन मौकों पे अपना सारा मोरल डाउन कर चुके होते हैं, जिस वक्त हमारी सारी रूहानियत ख़त्म हो चुकी होती है, वो वक्त हमारी अपलिफ्टिंग का होता है। अल्लाह उठा के मक्कन्ना अली यूसुफ, अल्लाह कहाँ से कहाँ ले जाता है। आप पढ़ के देख लीजिए लोगों की कहानियाँ, जिन्होंने दुनिया में बड़े काम किए उनको ज़रूर कोई ना कोई ऐसी ठोकर पड़ी। आयमा कराम की ज़िंदगी तो पढ़ के देखिए आप, मुहद्दिसीन कराम को पढ़ के देखिए, वो हमारी तरह के नाजो अंदाज में पले हुए लोग नहीं थे, जो अपने नफ्स के घोड़े को नहीं बांध सके आज तक। हमें इस कुरान से क्या मिलना है अगर हमने इसकी कदर ना पाई। तो ये आज का सबक था जिसने हकीकत में मुझे लगता है कि आपसे ज़्यादा मुझे कुछ दिया, क्योंकि शायद अभी आप पहली दफ़ा सुन रहे हैं ना, जो कई बार सुन रहे हैं उनको तो और भी बहुत चीज़ें मिलेंगी। लेकिन हकीकत है, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बड़े बने, यूसुफ की तरह उनको इज्जत मिले, आप अपनी बच्चियों के रोशन मुस्तकबिल चाहते हैं, आप उनके अंदर ये खूबियां पैदा करें। अल्लाह से ताल्लुक जोड़े बगैर बंदों से ताल्लुक जुड़ ही नहीं सकता। आप कहते हैं हम कोर्स करने लग गए, कुरान पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह नफ्स दब गए, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। एक जाहिल का नफ्स ढीला ढाला होता है, उसको 4 बातें सुना तो कहते और तू भी सुना लो, तुम भी कर लो जी, हमें तो लोगों ने हमेशा गालियां ही दी, तुम भी दे लो। ये तो एक आम दर्जे का होता है। और जिसको 4 लफ्ज आ जाए, 4 पैसे मिल जाओ, कहते तुमने बात की तो की क्यों, मुझे तो सबसे ज्यादा आपके डर है। मुझे दुनिया में अब शायद इस वक्त किसी का इतना गम ना हो जितना मुझे आप लोगों का, क्योंकि आप यहां से कुरान पढ़ के जा रहे हैं। जितना आप कुरान आगे पढ़ते जाएंगे नफ्स और ज्यादा अकड़ेगा, वो नए कपड़े की तरह कड़क लगा हुआ, कलफ लगा हुआ। बज़ाहर आप बड़ा कहते हैं हाय हम्बल हाय नाइस बहुत ये हो गया, लेकिन शैतान सबसे ज्यादा आपके जिस्म में नफ्स के आएगा। शुरू में बात हो गई ये डिटेल से, तो इसको हर रोज कुछ ले। अल्लाह के नबी ने दुआएं सिखाई, अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तकवाहा, पढ़े जरा मेरे साथ, अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तकवाहा, अल्लाह मेरे नफ्स को अपना तकवा दे दे, अल्लाहुम्मा रहमत करजू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफताइन, ए अल्लाह मैं तेरी रहमत की उम्मीदवार हूँ और मुझे मेरे नफ्स के हवाले एक पलक झपकते के यानी ब्लिंक ऑफ आई मुझे मेरे नफ्स के हवाले ना करना। वो एक ही वक्त होता है जब हम अपना टेम्पर लूज करके सारी वो गुब्बारे से ईमान की हवा निकाल के छत से निकल कर ज़मीन पे आ जाते हैं। अल्लाह ताला हमें समझ दे दे। कोई बात जी, आप दुआ, अल्लाहुम्मा रहमतका अर्जू फला तकिलनी इला नफसी तरफता आईनी। और दूसरी भी याद हो गई है, अल्लाह के नबी की दुआएं पढ़े नफ्स के फितनों से, या का नस्ताइन बुक है उसका ऐप खोलें, उसमें हिफाजत की दुआ में आप देखेंगे बहुत सारी दुआएं नफ्स के फितनों की हैं। और वही कहते हैं कि डबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। यकीन करें क़यामत के दिन बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कोस रहे होंगे, या लैतनी कद्दम तुली हयाती, काश मैंने कुछ आगे की फिक्र की होती, या लैतनी लम्मत तखिजु फलानन खलीला, सूरह फुरकान में आता है, काश मैंने फलां को दोस्त न बनाया होता। इंसान कुछ कहेगा, आप सिर्फ या लईता का लफ्ज डाल के कुरान की डिक्शनरी खोलें, आपको ये सारी हसरतें मिल जाएंगी। ये नफ्स हमें आज दुनिया में भी नहीं जीने देता, और इसी ने तो शैतान को जन्नत से निकलवाया था। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे। जजाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।